पृष्ठ संख्या 129 कीर्ति लता का महत्व। इस संदर्भ में विद्यापति की कीर्ति लता का महत्व असाधारण है। यह उस कवि की रचना है जो अपभ्रंश के अलावा देशी भाषा में भी रचना करता है। इससे पहले प्राकृत और अपभ्रंश के कवि देशी भाषाओं का उल्लेख मात्र करते थे, बहुत कुछ देशी शब्दों की सूची दे देते थे। विद्यापति देशी भाषा का उल्लेख ही नहीं करते, उसने रचना भी करते हैं। यदि मैथिली में उनकी रचनाएं सुलभ न होती तो विद्वान अवश्य कहते कि मैथिली अभी अपभ्रंश के गर्भ में है। 100-200 साल तक उसका उद्भव रुका रहता, किंतु विद्यापति ने मैथिली में कविता करके इस संभावना का नाश कर दिया। प्राकृत अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषाओं वाली सीढ़ी इतनी सुगम है कि विद्वान उसे छोड़कर आधुनिक भाषाओं के विकास सूत्र अन्यत्र नहीं खोजना चाहते। इसलिए विद्यापति की अपभ्रंश और मैथिल का समकालीन अस्तित्व देखते हुए भी वे इसी अपभ्रंश से विद्यापति की अवहत्त से मैथिल के उद्भव की कल्पना छोड़ नहीं सकते। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार कीर्ति लता के अपभ्रंश को मैथिल अपभ्रंश कहना उचित होगा। कीर्ति लता की भाषा का विवेचन करने के बाद निष्कर्ष रूप में उन्होंने लिखा है, कीर्ति लता की भाषा आधुनिक मैथिली और मध्यकालीन प्राकृत के बीच की है। विद्यापति ने लिखा था, देसिल बना सब जन मिठा तम पैसन जमपनु अवहट्टा। यहाँ देशी भाषा को अपभ्रंश मानकर जिन लोगों ने विद्यापति की पंक्तियों की व्याख्या की, उनकी उचित आलोचना शिव प्रसाद सिंह ने कीर्ति लता और अवहट्ट भाषा में की है। उन्होंने पंक्तियों को जिस रूप में उद्धृत किया है वही रूप यहाँ दिया गया है। उन्होंने ठीक लिखा है, अवहट्ट के साथ विद्यापति ने जिस देसिल बयन का नाम लिया है उसका संकेत मैथिली की ओर है और उसे व्यापक अर्थ में अपभ्रंश की तुलना में सभी आधुनिक आर्य भाषाओं के लिए अभिधेय मान सकते हैं। इसलिए अवहट्ट और देसिल बयन को तदेव सिद्ध करने का आग्रह निराधार और व्यर्थ है। शिव प्रसाद सिंह का अनुसरण करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कीर्ति लता के अपने संजीवनी व्याख्या वाले संस्करण में अवहट्ट और मैथिल को अलग माना है। पुस्तक का अधिकांश भाग अवहट्ट में है और कुछ भाग विद्यापति की समकालीन प्राचीन मैथिली भाषा में है, जिसे विद्यापति ने देसिल वेड़ा कहा है। कीर्ति लता की भाषा को उन्होंने भी पृष्ठ संख्या 130 परवर्ती अपभ्रंश माना है। उसे अपभ्रंश भाषा से आगे विकसित होने वाली अवहट्ट भाषा कहा है। आगे लिखा है, ज्ञात होता है कि अवहट्ट और प्राचीन मैथिली एक दूसरे के अति निकट आ गई थी और व्याकरण की दृष्टि से दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया था। इस वाक्य से ऐसा लगता है कि डॉक्टर अग्रवाल के लिए अवहट्ट वैसे ही बोलचाल की भाषा थी जैसे मैथिल। इसीलिए दोनों एक दूसरे को इस तरह प्रभावित करती हैं जैसे दो पड़ोसी जनपदीय भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि मिथिला की बोलचाल की भाषा मैथिल थी तो इस बोलचाल की भाषा को एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा कैसे प्रभावित करेगी? दरअसल बोलचाल की भाषा मैथिल ही कृत्रिम भाषा अपभ्रंश को प्रभावित करेगी। इससे यह धारणा स्पष्ट होती है कि अपभ्रंश परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों प्रकार की अपभ्रंश देशी भाषाओं से प्रभावित प्राकृत है। अनेक प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथों के समान कीर्ति लता का भाष्य भी संस्कृत में लिखा गया। यद्यपि कीर्ति लता में ही अपभ्रंश के साथ मैथिल विद्यमान है, अपभ्रंश के गर्भ में नहीं, उसके बाहर निज रूप में विद्यमान है, फिर भी शिव प्रसाद सिंह ने परंपरागत धारणा की पुष्टि करते हुए मैथिल आदि भाषाओं को परवर्ती अपभ्रंश के गर्भ में स्थित माना है। परवर्ती काल में अपभ्रंश बहुत कुछ प्राकृत प्रभावों को झाड़ने लगा था और उससे देश भाषाओं का मूल ढांचा विकसित हो रहा था जो एक तरह अपभ्रंश से भिन्न जन भाषाओं में नया रूप ग्रहण कर रहा था। शिव प्रसाद सिंह ने कीर्ति लता की भाषा को परवर्ती अपभ्रंश माना है, इसलिए उसके साथ संदेश, राशक, चर्यागीत आदि को भी अपने विवेचन का आधार बनाया है। इसी धारणा का अनुसरण करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्राकृत पैंगलम में प्राप्त हमीर रासों की भाषा को उत्तरकालीन अपभ्रंश या अवहट्ट माना है। 12वीं सदी में रचे हुए पृथ्वीराज रासों को वह अवहट्ट प्रधान शैली में रचा हुआ ग्रंथ मानते हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता 15वीं सदी में लिखी किंतु देशी भाषाओं में अवहट्ट प्रधान शैली में रचना 200-300 साल और पहले होने लगी थी। 12वीं सदी में हेमचंद्र ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा और इसी 12वीं सदी में देशी भाषाएं साहित्य का माध्यम बनने लगी थी। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस संदर्भ में लिखा है, इसी शति के मध्य भाग में दो प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। एक तो भाषा के अवहट्ट रूप में भाषा की अधिकाधिक प्रकृति अर्थात अपभ्रंश में देशी भाषाओं के अधिक तत्व मिलाने की प्रवृत्ति और दूसरे प्राचीन प्रादेशिक भाषाओं के अलग विकास की प्रवृत्ति। इस समय का प्रामाणिक साहित्य अभी प्रकाश में नहीं आया, किंतु जान पड़ता है कि इन दोनों शैलियों का विकास अलग अलग और मिलकर भी होता गया। पृष्ठ संख्या 131। जैसे 12वीं शती के अंत में चंद कवि ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा वह अपभ्रंश या अवहट्ट प्रधान शैली को अपना कर ही लिखा गया था। दो शैलियों की बात पढ़कर मणि प्रवालम शैली याद आ जाती है। केरल की बोलचाल की भाषा मलयालम थी, संस्कृत नहीं। अवहट्ट में जनपदीय भाषाओं के तत्व मिलाए गए हैं। ये जनपदीय भाषाएं ही जन साधारण के दैनिक व्यवहार का माध्यम थी, अवहट्ट नहीं। अपभ्रंश और संस्कृत में मौलिक अंतर यह था कि संस्कृत एक समय बोलचाल की भाषा रह चुकी थी और शिष्ट जनों की भाषा बहुत दिनों तक रही, पर अपभ्रंश या प्राकृत कभी भी बोलचाल की भाषा नहीं थी, न शिष्ट जनों की भाषा थी। होती तो संस्कृत में भाष्य लिखने की नौबत न आती। वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह मत प्रकट किया है कि 12वीं सदी में प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य रचा जाता था, यह बात सही है। विद्यापति ने अवहट्ट में लिखा, संस्कृत में लिखा और सौभाग्य से मैथिल में भी लिखा। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट और देशी इन चार भाषाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। ये उनके समय में साहित्यिक माध्यम के रूप में प्रचलित थी। यह परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी, किंतु अन्य कवियों ने देशी भाषाओं का उल्लेख मात्र किया, उनमें काव्य रचा तो वह प्रकाश में नहीं आया। अपभ्रंश का व्यवहार करने वाले महाकवि कालिदास भी थे। अपभ्रंश के श्लोक उन्हीं के रचे हुए हैं। इस धारणा का समर्थन करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि विक्रमोवर्षीयम के चौथे अंक में प्रयुक्त रंगमंच संबंधी निर्देशनों से ज्ञात होता है कि ये श्लोक प्रायः चरचरी नृत्य के साथ गाए जाते थे। चरचरी एक लोक नृत्य का नाम था जिसे जयसी ने चाचरी कहा है। ज्ञात होता है कि अपभ्रंश और प्राकृत के इन प्रत्युक्ति और अन्योक्ति श्लोकों की रचना करते समय कालिदास एकदम ठेठ लोक के धरातल पर उतर आए। अपभ्रंश के मात्रिक पद संस्कृत या छंद विधान भंग करते हैं। अंत्यानुप्रास की प्रवृत्ति भी जहाँ तहाँ परिलक्षित है। जो लोग इन अपभ्रंश पद्यों को कालिदास विरचित मानते हैं, उनके भाव विह्वल होने का कोई कारण नहीं है। यह अपभ्रंश लोक भाषा नहीं है और आधीरों की भाषा से उसका संबंध उतना ही है जितना सरहपाद की भाषा का। अन्य ग्रंथों की अपभ्रंश के समान कीर्ति लता की अपभ्रंश में भी अनेक देशी भाषाओं के तत्व मिलते हैं। उसे चाहे परवर्ती अपभ्रंश कहा जाए चाहे पूर्ववर्ती अपभ्रंश है वह अपभ्रंश, और उससे मैथिल भाषा का जन्म नहीं हुआ है। मैथिल भाषा में उसके समानांतर साहित्य रचा जा रहा था। उसमें संयुक्त व्यंजनों की प्रचुरता और मध्यवर्ती व्यंजनों का लोप उसी प्रकार हेमचंद व्याकरण के अपभ्रंश पद्यों में है। कित्तिवल्ली, खेल खेलत तड़े, कब सब, विज्जावई, छ इल्ल, पृष्ठ संख्या 132। मइल्ल रूपों की भाषा न तो मैथिल है और न पूर्वी प्रदेशों की अन्य कोई भाषा। इसमें ड़कार बहुलता वैसे ही है जैसे प्राकृत में 2500 शब्द ड से आरंभ होते हैं। फारसी शब्दों का जो अपभ्रंशीकरण हुआ है वह काफी रोचक है। उज्जीर वजीर, खाड़ खान, तवेला तबेला, पैजल पैजाज, जूते पाइगह पायगाह, घुड़सवार, फरमान फरमान, व इल्ल बाली, मुलुक्का मलिक, सुरतान सुल्तान आदि कर्ता कारक में पश्चिमी भाषाओं के ने का प्रयोग जिन्य रूप में अनेक बार हुआ है। पूर्वी प्रदेश के लोगों को इसने से अभी तक परेशानी होती है। यह निश्चित है कि विद्यापति के समय में इसका प्रयोग मैथिल भाषा में न होता था। विद्यापति ने एक जगह तुरुकाड़नों अथवा तुरुकाड़नों रूप का प्रयोग किया है। इसमें संबंध सूचक नो गुजराती भाषा में प्रयुक्त होता है। हिंदी क्षेत्र की पूर्वी या पश्चिमी किसी भी बोली में उसका व्यवहार नहीं होता। इसी तरह उन्होंने जियना भोवना बटुराना जैसे क्रियार्थिक संज्ञा रूपों का प्रयोग किया है जो पश्चिमी बोलियों की विशेषता है। अनेक सर्वनाम अनेक कारक चिन्ह अथवा पर सर्ग यहाँ वही है जो तुलसीदास की रचनाओं में मिलते हैं। इनमें अनेक ऐसे हैं जिनका प्रयोग मैथिल या पूर्वी बोलियों में नहीं होता। अतः इस परवर्ती अपभ्रंश का कोई विशेष संबंध मैथिल से नहीं है।